जिनके गुण के गाने वे बार हमारे महान चुरे हमारे इक्यासी गाथा तथैव प्राप्त चिंतामणिरपि मे प्रमादो दस्यु इति जागर्ति। यद्यपि मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है तो भी प्रमाद रूपी लुटेरे दस्यु डाकू उसे लूटने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए, इसलिए मैं जागता हूं। यहां इस प्रमाद को डाकू कहा। तो प्रमाद क्या है? जो अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय को प्रमाद कहते हैं। अनंतानबंदी का तो मिथ्यात्व के साथ चला गया, तो संयम की जो घातक कसाएं हैं उन सबको प्रमाद कहते हैं। इसे छठवें गुणस्थान वालों को प्रमत्त कह वाला कहते हैं, है ना? फिर आगे आगे बढ़ती हैं तो जो जो कम होती हैं तो उन्हें अप्रमत्त वाला कहने लगते हैं। गाथा बोलो।
भगद मोह उबलदो तच मपणो सम्मम जहदि जदि राग दोषे सो अपाणम लहदि शुद्धम जो जीव व्यपगत मोह हो निज आत्म उपलब्धि करे बेछोड़ दें यदि राग रुस शोधात्म उपलब्धि करें।
जीवो बवगद मोहो, जिनका दर्शन मोह चला गया है ऐसे जी जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि जिनने की है। अब यदि वे राग देश माने चारित्र मोह को भी छोड़ दें तो और अच्छी तरीके से शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। खुद कृष्ण का उठाया है आचार्य देव ने आगे टीका में कि दो दो बातें एक साथ कहते हो। एक तो जिसने आत्मा को मोह को जीतकर आत्मा को उपलब्ध किया है, फिर भी राग देश मोह कई तो भेद हैं, तो दूसरे नाम से मोह का नाम ले दिया। यदि हम उनको मोह ही कहें तो एक हम मोह को जीतकर जिनने आत्म तत्व उपलब्ध किया है ऐसे जीव यदि मोह नहीं करें माने राग देश नहीं करें तो वे उत्तम तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, वे और अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं। तो उपलब्ध कर ही लिया है तो उपलब्ध कर सकते हैं की बात क्या है। तो इसका एकदम स्पष्ट है जो अपन ने इसमें लिखा भी है कि उपलब्धि दो प्रकार की होती है। एक तो वो चौथे गुणस्थान में सम्मा दर्शन हो गया उसे उपलब्धि कहते हैं आत्मा की, और एक यानी दो दो जगह होते हैं ना करण, तीन करण, एक चौथे गुणस्थान होने के पहले होते हैं करण लब्धि में, वे तीन करण आधा करण अपूर्व करण अनुवृत्ति करण नाम के गुणस्थान है, तो वहां भी ये तीन करण होते हैं। तो ये दर्शन मोह के नाश करने वाले करण हैं और वे चारित्र मोह के नाश करने वाले करण हैं। तो जब उपलब्ध कर लिया ये बात कही तो दर्शन मोह को नाश करके सम्मा दर्शन को प्राप्त किया उसकी बात है, और जब ये कहा कि उपलब्ध करेगा यदि वो राग द्वेष छोड़ दे तो वे चारित्र मोह के जो करण हैं उनकी बात करते हैं। देखो आपके पेज नंबर 148 पर निकालो आगे। तीसरी लाइन से पढ़ते हैं। यहां एक प्रश्न संभव है कि इस गाथा के ऊपर की पंक्ति में तो यह कहा है कि जिसने मोह को दूर किया है और आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि यदि राग द्वेष को छोड़े तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। क्या उक्त दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। बात मात्र इतनी ही है कि आत्मोपलब्धि दो प्रकार की होती है। पर ये जो एक नंबर और दो नंबर चढ़ा, अभी इसे अपन पढ़ेंगे। जयसेनाचार्य की जो टीका है उसकी एक टीका ज्ञान सागर महाराज ने लिखी है। जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे पास वो ज्ञान सागर महाराज की, एक वीर सागर महाराज की, ये सब टीकाएं वो उपलब्ध थी, और भी एकाध दो जयसेनाचार्य की टीकाएं लिखी है। तो ज्ञान सागर की टीका में ऐसा लिखा है कि एक आत्म उपलब्धि और तीसरे प्रकार की होती है, और उसमें ये लिखा है कि वो आत्म उपलब्धि हमने शास्त्र में पढ़ के और आत्मा जान लिया और विश्वास कर लिया, ख्याल में आई ना, एक वो आत्म उपलब्धि है, और इसलिए वो चौथे गुणस्थान में वो हो जाती है और अनुभव पूर्वक नहीं होती। आप समझे ना, ये उन्हें उस वक्त मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी अभी मैं आपको कहता हूं कि उन ज्ञान सागर जी महाराज को, वे बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भाषा पर उनको बहुत अच्छा अधिकार था। उनने जो काव्य लिखे हैं वो कालिदास जैसे फिलो हैं, वैदर्भी शैली में, और जिसमें एकदम पढ़ो तो फिलो में के साथ एकदम पढ़ते चले जाओ, और जो संस्कृत थोड़ी जानते हो तो उन्हें अर्थ खुलता चला जाता है, ख्याल में है ना, जिसमें प्रवाह होता है, ऐसे उनने लिखे हैं। और वैसे ही अलंकार, वैसे ही भाषाएं, जो काव्य में विशेषताएं होती हैं वो सब विशेषताएं उनके काव्य में हैं, और यहां तक कि कुछ लोग उनको मानम कालिदास का भी श्रृंगार रस के काव्य है ना, तो उनने भी श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया है, तो इसलिए कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। इसे उनको तो नापसंद होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो विद्यासागर के ग्रुप को नापसंद करता है वो लोग उस बात की कि देखो इसमें देखो ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन है उसमें विस्तार से, तो उसमें सुलोचना की सुंदरता का, जैसे शकुंतला का वर्णन किया ना कालिदास ने, ऐसा ही वर्णन उन्होंने उसमें उसका सुलोचना का किया है। तो उस वक्त मुझे लगा था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत दम है। पर वो दम क्या है कि अपने भी तो कह रहे हैं ना कि देशना लब्धि में हम शास्त्रों में पढ़कर और गुरु मुख से सुनकर आत्मा का स्वरूप हमें पूरा उसका ख्याल में भी आ जाता है, बिल्कुल जैसा कि अनुभव में आता है वैसा ही, और हम पर उसे पूरा भरोसा भी हो जाता है, और उसमें जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बनता है आगम के अनुसार, उसमें हमारा अपनापन भी हो जाता है, और उससे प्रति जो हमारे तीव्र रुचि और आकर्षण होता है उसी से प्रायोग्य लब्धि होकर हम कर्ण लब्धि में जाते हैं। तो मैंने वहां पूरा अनुभव, वहां तो कम से कम नहीं हुआ शांति जी, जब वो आत्मा का अनुभव हो जाएगा कर्ण लब्धि के बाद, कर्ण लब्धि में तब जो सम्मा दर्शन होगा, तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो अनुभव के बिना नहीं हुआ, लेकिन ये जो पहले श्रद्धान हुआ है वो तो अनुभव के बिना ही हुआ है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में आत्मोपलब्धि आगम के अनुसार होती है, और वो लेकिन वो सिर्फ सम्मा दृष्टि को चौथे गुणस्थान में उसे मानते हैं, हम कहते हैं वो पहले गुणस्थान की बात है। तो बात गुणस्थान का अंतर पड़ा, लेकिन वो बात एकदम हवा में नहीं थी जैसी कि हमें उस वक्त लगी थी कि जी इन्हें नया निकाला है, लेकिन आगम में है मतलब वो बात, लेकिन कहाँ है कैसी है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पर जब भी हमारी समझ में उसकी सच्चाई, उसका थोड़ा बहुत सच्चापन आए ख्याल में, तो हमको उसे ईमानदारी से प्रकट भी करना चाहिए। ये 81वीं गाथा में बता रहे हैं, दो प्रकार की आत्मोपलब्धि है। कोई अपन इसी को इसी भाषा में ही पढ़ लेते हैं। पहली, पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा के परिज्ञान अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक उसी में अपनापन हो जाने को आत्मोपलब्धि कहते हैं। चौथे गुणस्थान में होने वाली इस आत्मोपलब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का उपसमाधि रूप अभाव होता है। उपसमाधि रूप का मतलब क्या, उपसम होगा, क्षय उपसम होगा या क्षय होगा, कुछ होगा एक ऐसा। उपर्युक्त आत्मोपलब्धि हो जाने पर भी अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संतुलन कषाय संबंधी चारित्र मोह विद्यमान है। मिथ्या तो अनंतानुबंधी कर्मों का भी यदि अभी क्षय न हुआ हो तो वे भी सत्ता में रहते ही हैं, समझे ना, माने वो भी मौजूद हैं। इन सबको प्रमाद भी कहते हैं। अतः यहां कहा गया है कि दर्शन मोह के नाश हो जाने पर भी प्रमाद रूपी चोर विद्यमान हैं और तेरी असावधानी का लाभ उठाकर तेरी प्राप्त आत्मोपलब्धि रूप निधि को लूट सकते हैं। अतः प्रत्येक ज्ञानी आत्मा को निरंतर सावधान रहना चाहिए। तो एक बात तो यहां इसमें ये है समझने की कि जो अभी मिथ्यात्व कर्म का भी क्षय नहीं हुआ है कम से कम, क्योंकि जिसका क्षय हो जाता है तो उसको फिर द्वारा सम्यक लुट जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो आचार्य भी पंचम काल के हैं, पंचम काल में क्षायक सम्म दर्शन होता नहीं तो उन्हें भी क्षयोपम या उपसम ही सम्म दर्शन होगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि हमें निरंतर जागृत रहना चाहिए। अब तीन चीजें खड़ी होंगी, कौन कौन सी, एक तो ये श्रद्धा वाली चौथे गुणस्थान वाली आत्मोपलब्धि, और एक वे लोग जो कहते हैं सातवें गुणस्थान में आत्मोपलब्ध होता है। तो सातवें में भी कहां होता है, वो तो पूरी तरह से तीनों कषायों का अभाव हो जाएगा तो वह एक तरह से बारहवें गुणस्थान के तेरहवें गुणस्थान की बात है कि हमें उन चौथे के ऊपर तो वे चोर अभी हमारे पास हैं, सातवें में भी वे मौजूद है ना। मान लो तीन कषाय चली गई तो संतुलन कषाय तो अभी मौजूद ही है और तीव्र उदय के रूप में मौजूद है छठवें गुणस्थान में। तो इसलिए कहते हैं, और तीसरा वो जो अपन ने अभी कही है कि अपन ने शास्त्र के आधार से पढ़कर और अपने हमारी पक्की श्रद्धा हो गई, तो ध्यान से सुनो, यदि वो हमारा निर्णय जो हुआ है आगम के आधार पर और गुरु के समझाने के आधार पर यदि वो सम्यक है, सम्यक के माने सही है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा हमें अनुभव होने के बाद होगा, यानी अनुभव होने के बाद भी हमें आत्मा देखने में आएगा तब वो वैसा ही दिखेगा आत्मा, और केवल ज्ञान होने पर भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वैसा ही दिखेगा, क्योंकि स्पष्टता में फर्क होगा, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं दिखेगा। यहां दिखा वो ज्ञानानंद स्वभावी और वहां दिखा दुखे दुख स्वभावी, ऐसा नहीं होगा। तो वहां भी हम कह सकते हैं कि वैसा ही दिखे। अब हमको आचार्य कहते हैं ये 81वीं गाथा में कि हमें वो हो गया है और अब आगे ये राग देश मोह हैं, ये फिर पनप कर, और ऐसा ना हो कि हमारी वो संपत्ति भी लुट जाए, तो हमें जागृत रहना चाहिए। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि हम सब मुमुक्षु जो अभी हैं, और खासकर मैं तो कहता हूं कि अपने स्मारक में जो विद्यार्थी सहित विद्वान जितने भी हैं, जो 750 विद्वान हैं और 150 तुम लोग हो, 900 1000 लोग समझ लो, इतने लोगों के लिए मैं कहता हूं, कोई इसमें शामिल हुए तो मुझे दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं माने कि हमको हमें क्यों छोड़ दिया। मैं ये समझता हूं कि ये लोग कम से कम आगम के आधार पर गुरुमुख से सुनकर वो सही बात समझते हैं, इसलिए कहता हूं। अब हम क्या करें, एक तो ये कि हम अपने आत्मोपलब्धि मान लें उसे, वो ज्ञान सागर जैसी आत्मोपलब्धि से आत्मोपलब्धि मान लें। और वो आचार्य ये कहते हैं कि तुम फिर हमको संपत्ति मिल गई है ऐसा मान के निश्चिंत मत हो जाओ। किनको? जिनको वो सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक कर्ण लब्धि पूर्वक भी हो गया हो। इसके लिए भी मैं एक बात कहता हूं कि 8 वर्ष की उम्र के पहले तो हुआ नहीं होगा, और आप सबने भी हमने भी 8 वर्ष की उम्र के बाद ही आगम से पढ़कर गुरुदेव के मुख से सुनकर और अपने ज्ञानी धर्मात्माओं से मुख के सुनकर उसका सही स्वरूप समझा है। और वो कर्ण लब्धि होती है तो वो अंतर्मुहूर्त तक तो होती है ना, वो भी काफी बड़ा अंतर्मुहूर्त होता होगा क्योंकि एक एक कर्ण का भी अंतर्मुहूर्त है और तीनों का मिलाकर के भी अंतर्मुहूर्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा कहके कि ऐसा कुछ याद है अपनी जिंदगी का कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक आध दफे हुआ है कर्ण लब्धि के परिणामों में हम जाकर और हमारे अंदर ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोते सोते हो गया होगा। अभी तुम दूसरों की बात जाने दो कि दूसरे उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि तुम मनवाओ किसी से, हमें उसका बिजनेस नहीं करना है। यदि हमें बिजनेस ही करना होगा तो हमारे पास भाषा संबंधी ज्ञान इतना अच्छा है, भाषा का कर लेंगे ना, भाषा तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना, है? मतलब मेरे उसके लिए तो सारी सुविधाएं हैं ना, जैसे और पढ़ाई के लिए हैं। क्या हम तत्व ज्ञान से ही करेंगे? मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें वो जो यदि ऐसा हमारे जीवन में हुआ है क्या, और यदि हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ है तो फिर व्यर्थ के विकल्पों से क्या फायदा। हमको मान लेना चाहिए जहां हम खड़े हैं वहां, और वहां से हमको अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए। एक पॉइंट समझे ना, यानी 80 गाथा जैसा लंबा चौड़ा बताने का माल इस गाथा में नहीं है। इस गाथा में जो बात वो कहना चाहते हैं उसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव करके मैं आपको बता रहा हूं कि हमें वो चुनना चाहिए। अभी मान लो कि आपको वो हो गया कौन खन्ना दर्शन, तो फिर आगे बढ़ने माने जागृत रहना चाहिए, माने वहीं पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसी 81वीं गाथा कहती है। अब यदि हम मानते हैं कि भाई मुझे तो अभी नहीं हुआ ऐसा, तो नहीं होगा तो होगा जल्दी, आपकी जितनी त्रुटि में तीव्रता आएगी और उसके प्रति आपका अपनापन जितनी तेजी से बढ़ेगा तो वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी आएगा और हमें भी अनुभव होगा। तो अब उसके पहले क्या करें, उसके लिए भी जागना जागते रहना वाली बात तो बुरी नहीं है ना, क्या उन्हें सो जाना चाहिए? उन्हें तो और ज्यादा जागते रहने की जरूरत है कि हम वहां तक तो आ गए देशना लब्धि तक, सब बात हमारी समझ में आ गई, अब रुचि की तीव्रता की कमी से हम प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि में नहीं जा पाए और वहां तक आत्मा के अनुभव तक नहीं पहुंच पाए, तो भी हमें वही करना है, और पहुंच गए हो तो भी वही करना। मेरे कहने का मतलब है काम दो नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि पंडित टोर्नामेंट जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि किन्हीं को तो वो वृताधिक सम्मादर्शन होने के बाद ही होते हैं, नियम तो वही है, लेकिन कोई कोई जीव पहले भी ले लेता है, तो भले ही उसके नहीं होते हैं
लेकिन बाहर भी पाप प्रवृत्तियों से तो बचता ही है ना,
और उसको बाद में भी वृत्तारिक हो जाते हैं। फिर वृत्त ले लिए पहले, फिर सम्मा दर्शन हो गया, लेकिन वो वृत्त बिल्कुल आगम के अनुसार थे, क्योंकि आगम पढ़ा था उसने कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग, तो सब मिला करके जो बिल्कुल उसको सही लगे थे वो ही किया। तो वे वृत्त जब सम्यक दर्शन होगा तो वे सम्यक चारित्र के रूप में परिणमित हो जाएंगे। वे वृत्त यदि वैसे अनाप शनाप ले लिए होंगे जो सम्यक दर्शन के बाद होते ही नहीं है, वे तो गारंटी से सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं, सम्यक दर्शन के होने के पहले ही छूटेंगे। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं अंतिम बिंदु पे आता हूं कि ऐसा मैंने बहुत सोचा, जो समझ लिखा की किताब लिखी ना तब सोचा, ये बाकी से ये गाथा भी चल रही थी साथ में, जहां जहां संलेखना पे बोला लिखा तो ये गाथा भी चल रही थी। क्या आचार्य कहते हैं कि जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, मैंने क्या कि राग देश ये प्रमाद रूपी चोर है और ये तेरी संपत्ति को लूट लेंगे, माने ऐसा नहीं कि आगे नहीं होने देंगे, ये वो जो संपत्ति जो सम्मा दर्शन हुआ है और जो अनंतान मंदी के साथ गई है वो संपत्ति को भी लूट लेंगे, इसलिए तुझे जागृत रहना चाहिए। तो अपन को भी जागृत रहना चाहिए और अपन को भी उसको सोचना चाहिए कि हम पहले अपने सोचते थे कि सम्मा दर्शन का जब तक बिल्कुल पक्का सुनिश्चय नहीं हो जाए, पक्की गारंटी नहीं हो जाए, तो तब तक अपन को व्रत नहीं लेना चाहिए, आशास्त्र की आज्ञा नहीं है। अब पक्की गारंटी का क्या हिसाब है कि साहब वो हो गया हो तो फिर आपको पता चले ही जाएगा ना, पहले दिन नहीं पता नहीं चले आपको नहीं है पता तो फिर ऐसा जबरदस्ती थोड़ी हो गया होगा वो, ये बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए यदि हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो हो गया था, और हो गया था तो छूट भी दे सकता है ना, तो आचार्य खुद अपने उसमें संबंध से शंका कर रहे हैं कि चोर लूट सकते हैं हम, मेरा मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूं कि वो यदि उपसमाधिक रूप हुआ होगा तो अंतर्मूर्त में खत्म नहीं होता है, और छह उपसम हुआ होगा तो उसका उत्कृष्ट 66 सागर का काल है, लेकिन जघन्य अंतर्मुहूर्त भी तो है, तो हमारा कोई उत्कृष्ट ही थोड़ी होगा, तो छूट भी सकता है, तो छूट जाएगा तो हमें ये याद तो रहेगा कि हमें हुआ था। अरे भाई जब छूट जाएगा तो उस पर जो बात पर विश्वास हो गया तुम्हें हुआ था उस पर ही कोई कारण पाकर भ्रम हो जाता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को होकर के हुआ ना कि अंदर में ऐसा ऐसा भगवान आत्मा है, और फिर वो स्पष्ट तो दिखता नहीं, साफ लिखा ना शास्त्रों में प्रदेश प्रत्यक्ष तो होता नहीं, आपने आगम में पढ़ा था उसकी रुचि की तीव्रता से ही हुआ था, तो उसमें फिर शंका हो जाएगी ऐसा कि मुझे सचमुच हुआ था या सपना आया था, क्या मुझे हुआ था कि सपना आया था, तो ऐसा होते ही गया खत्म। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा देर ऐसे तुम मथामथी करोगे तब जाएगा, वो तो इतना विकल्प खड़ा हुआ ना, दादा तो संशय खड़ा हो गया, वो संशय खड़ा हो गया तो सम्यक ज्ञान नहीं रहा, सम्यक ज्ञान में संशय का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि वो हो गया था कि होगा कि अभी इसमें बहुत अनिश्चय है, हो भी गया हो तो छूट गया होगा, छूट भी सकता है, नहीं भी हुआ हो, मतलब हम इस चक्कर में क्यों पड़े। अब ये जो सर्टिफिकेट बटे हैं ये सब फिर बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, खैर अपन उस झंझट में नहीं पड़े, महाभाग्य से अपने हिंदी प्रांत में ये बीमारी नहीं है, हैं? ख्याल में है ना, तो हम तो अपने स्वरूप पर विचार, मैंने विचार किया गंभीरता से कि इसलिए अपन को थोड़ा पंचम गुणस्थान की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से, क्योंकि जो रुकावट थी ना वो इसे 81वीं गाथा के चिंतन मनन से और उस सबसे थोड़ी हल्की पड़ी। क्या अब इस झंझट में नहीं पड़े कि अभी हैं कि नहीं है कि मिट गए कि झूठ गया कि फिर बाद में आ गया कि हो गया था, ख्याल में आई ना। अपने उस दिशा में तो प्रयत्न जो करना है करो ही, लेकिन यहां इस दिशा में भी करना चाहिए। क्या अभिनंदन जी, गंभीरता से विचार कर। मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी मुझे, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, सभा में भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूं इस तत्व को समझाने के लिए कि आपके गले उतरे, आप समझे ना। तो मैंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें मुझे ऐसी लगी कि हम जो हमारे करुणानुयोग का के हिसाब से कहते हैं, करुणानुयोग के हिसाब से कहते हैं, तो वो ही भी नहीं निपटती दिखती हैं। अब वैसे ही नाम का लेना हो तो ले लो, क्या जैसे कि आज के किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछने जाओ, उनसे कहो, उनसे कहोगे तुम हमें दे दो दूसरी तत्व, मतलब अपन को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब किसी विशेषज्ञ की राय लो तो उसमें सबसे पहले दवाइयां बंद करो। तो अब तो आज ही वैसी समाधि लो जैसी अपन समाधि को समाधि नहीं मानते, आप समझे, और जिसमें आत्महत्या का दोष लगता है, और नहीं तो नहीं हो सकती, क्या करें। मैंने ये उदाहरण के लिए मैंने एक दवाई का नाम लिया, और भी ऐसी कई चीजें हैं कि जिस तरह की वहां पर शांति जी कहीं जाती हैं कि वे होना चाहिए। अभिनंदन जी, आखिरकार मैं अंतिम इसी निर्णय पर पहुंचा कि अपन तो अपनी दिशा में जो भी पुरुषार्थ हो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, और उस वक्त भूमिका अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। यदि हमारे वही व्रत हो जाएंगे और उन व्रतों में दवाइयां नहीं होती होंगी तो दवाइयां भी छूट जाएंगी, और दवाइयों के साथ वो व्रत शुद्धि होती होगी तो दवाइयां बनी रहेंगी और शुद्धि हो जाएगी। मेरा मतलब हमारे विकल्प के अधीन थोड़ी है वो, यद्यपि प्रचारण योग कहते कि नहीं नहीं उन्हें विकल्प पूर्वक जागना चाहिए, आप समझे ना, वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा तत्व नहीं है कि विकल्प पूर्वक जागना सही होगा, ख्याल में आए ना, ऐसा नहीं है। देखिए जो आदिनाथ भगवान थे 6 महीने तक रोजीना आहार को निकले, तो ऐसा थोड़ी है कि आहार को निकले और आहार नहीं मिला और लौट आए तो भी उनका वो फिर वो भंग हो गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बाहुबली ध्यान में खड़े हुए थे तो भी 1 साल की प्रतिज्ञा लेकर खड़े हुए थे, ऐसा थोड़ी है, वे तो खड़े हुए थे और कभी भी छूट सकता था, लेकिन उनका विकल्प वही बना रहा कि जब भी विकल्प बाहर आया होगा तो उनने सोचा होगा तो फिर अंदर में जाने की कोशिश में लग गए, वही विकल्प बना रहा उसमें तो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो सही होना चाहिए। ये 81वीं गाथा के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो अपन ने पढ़ा है ना, इन सबको प्रमाद भी कहते हैं। अतः यहां कहा गया है कि दर्शन मोह के नाश हो जाने पर भी प्रमाद रूपी चोर विद्यमान है, और तेरी असावधानी का लाभ उठाकर वे तेरी प्राप्त आत्मोपलब्धि रूप निधि खजाने को लूट सकते हैं। अतः प्रत्येक ज्ञानी आत्मा को निरंतर सावधान रहना चाहिए। ये जो कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, तो हम क्या सावधान रहें, इसकी मैंने आपसे बात की। क्या तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है। अभी कई दफे अपन लोग ही कहते रहे हैं कि वो तो हो गया, फिर तो वो सब ऑटोमेटिक लेन पर लग जाएगा और अपने आप सब हो जाएगा। एक दफे ये बुद्धिपूर्वक हो जाए फिर अपने आप भूमिकाओं के अनुसार बढ़ेगा, ऐसा कहते हैं ना। कि फिर मैं पहले उदाहरण देता था ना, वो कि साहब हमें सम्म दर्शन, फिर बेटा फिर तो तुम बताओगे जगत को कि सम्म दर्शन क्या है, फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, अब तुम हो जाओगे। ख्याल में आई ना, जैसे वो महिला का उदाहरण देता था कि जब मेरे बाल बच्चा हो तो तुम मुझे जगा देना, कि बेटा तू सारी मोहल्ले को जगाएगी, तुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब समय निश्चित हो जाएगा तो तू सारे मोहल्ले को जगाएगा, मैं ऐसा कह दिया था। अब मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, क्या क्या कि संबंधन से निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है, माने संबंधन के बाद भी, संबंधन के पहले भी, अनुमृत हो जाने के बाद भी, महामृत हो जाने के बाद भी, छठवें साधवें अनुष्ठान होने के बाद भी, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये जो 81वीं गाथा के आधार पर हमको अत्यंत सावधान रहना चाहिए, एक बात हुई। और फिर वो जो क्रमवद पर्याय के हिसाब से अपन कहते हैं कि सब नक्ति तो है ही, वो सब उसके अनुसार हो, और सावधानी के नाम पर हम पुरुषार्थ तो हमारा कुछ भी नहीं उखड़े और दिमाग में चिंता मुफ्त की खड़ी हो जाए, वो अच्छी बात नहीं है, उसका निषेध करते हैं। जैसे वो गोली भी सही है, कौन सी, क्या जो नक्की है भविष्य, तो जहां भी जिस काल में जो होना है तो माथा पे बोझा, तो बोझा के निषेध के लिए वो सही है, और जागृति के लिए ये गाथा सही है, और इन दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्यों अभिनंदन जी, जो मैं कह रहा हूं या अपनी बात कह पा रहा हूं कि नहीं कह पा रहा हूं, मैं ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूं उदाहरणों में उदाहरणों की, क्योंकि बहुत समझदार सब लोग मौजूद हैं, उनको ज्यादा उदाहरणों की जरूरत नहीं है क्या। लेकिन मुद्दे की बात ध्यान में है, सावधानी भी चाहिए हमें, वो इसे कहते हैं स्वच्छंदता नहीं चाहिए और चिंता भी नहीं चाहिए, क्या है? हाँ। देखो तात्पर्य यह है कि सम्मा दर्शन की प्राप्ति के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है, अपितु राग देश आदि विकारी भावों को जड़ मूल से उखाड़ फैलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील क्या क्या प्रयत्नशील रहें, अनुभूति के काल की वृद्धि और अनुभूति के वियोग काल का निरंतर कम होते जाना ही वह पुरुषार्थ है जो चारित्र मोह संबंधी उक्त कर्म प्रवृत्तियों को शिथिल करेगा। क्या पुरुषार्थ करें, बस जो हमारे को आत्मा का अनुभव होता है उसका काल बढ़े, और वियोग होता है ना 6-6 महीने का, उसका काल घटे, वो 6 महीने से 5 महीना हो, 4 महीना हो, ऐसे घटते घटते 15 दिन रह जाए, 15 दिन से भी कम रह जाए तो समझ लो कि आपको अनुमृत हो जाएंगे, आपका गुणस्थान बदल जाएगा और हर अंतर मूर्त में होने लग जाए तो आपका मुनिराज हो जाएंगे। फिर कपड़ा कपड़ा कब खोले, तब तुम फिर कपड़ों की चिंता मत करो, कपड़ा परद्रव्य है, वो भी तुमको पता चल जाएगा जब तुम्हारे 6वें 7वें गुणस्थान के भाव हो जाएंगे, तो वो ज्यादा दिन तक कपड़े आपके शरीर पर नहीं रह सकते, कहने आप समझे ना, वे भी हो ही जाएंगे, और हम उसको विरुद्ध थोड़ी हैं, बुद्धि पूर्व ही होंगे मेरे कहने का मतलब, लेकिन हम तो अभी कुछ भी नहीं है, ठिकाना कुछ भी नहीं है, जीरो पे ही नहीं खड़े हैं, और सबसे पहले कपड़ों को ही शत्रु मान के बैठ गए हैं, मेरे कहने का मतलब हम तो उसकी बात करते हैं, यथा समय तो सब हो गई। जो असली मुनि होते हैं, मैंने जो दीक्षा लेने की बात कर रहा हूं, और जिनके घर वालों को दीक्षा लेने का भाव होता है, तो जब भी घर वालों से अनुमति मांगते हैं जैसा प्रवचन सार में लिखा है, तो तब घर वाले तो पहले से जानते हैं उसकी परिणति को लगभग लगभग, क्योंकि वो उसकी परिणति कोई 1 सेकंड में तो नहीं हो जाती एकदम अचानक वैसी, उसके लक्षण तो उसे सब दिखने लगते हैं ना। देखो तुम लोग अपने घर से यहां आए हो और आकर के 1 साल यहां रहे, 2 साल यहां रहे, 4 साल रहे, तो तुम्हारी परिणति में कितना फर्क आया ये हमें मालूम नहीं पड़ सकता, हम तो तुम्हें रोज ही ना देखते हैं, तुम्हें भी मालूम नहीं पड़ सकता, लेकिन तुम्हारे मां बाप को, तुम्हारे पड़ोसियों को, जब तुम गांव में जाते होगे स्पष्ट अलग दिखाई देता होगा, उन्हें फीलिंग होता था, होता होगा कि वो हमारा यहां से जो लड़का गया था उसमें और इसमें बहुत फर्क है, और ये आप लोग अनुभव करते होंगे, जब आप लोग जाते होंगे तो गांव वाले भी तुमसे कहते होंगे, ऐसा अनुभव करते होंगे। माँ बाप आपके आपको विशिष्ट समझकर आपकी बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको देखने लग गए होंगे। हो सकता है कि वे आपका सीधा नाम लेने में भी उन्हें संकोच होने लग गया होगा, ये भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, किसी न किसी दूसरे नाम से पुकारने लग गए होंगे, यदि नाम को भी जी लगाने लग गए होंगे। ऑटोमेटिक हो जाता है, जब कोई बड़ी चीज परिवर्तन हमें दिखता है जीवन में, किसी के जीवन में, तो हमें सम्मान के लिए कुछ स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ते हैं, हैं? अभी देखो अपने विद्यार्थियों को जी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बोलो, और किसको कहना चाहिए किसको नहीं कहना चाहिए, अपने आप समय पर होता जाएगा। शांति जी, अभय जी, ये अपने आप लगता जाएगा। ऐसा तो नहीं, पहले हम शांति भी कहते होंगे, कभी शांति ने ऐसा किया है, अभी शांति जी भी कहने लग गए, मेरे कहने का अभिनंदन जी कहने लग गए, अभिनंदन भी कहते होंगे, होता है, कह सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ज्यों ज्यों वो होता जाएगा वो अपने आप बैलेंस होता जाएगा, उसे हमें कहने की जरूरत नहीं है, ना चाहने की जरूरत है और ना किसी को कहने की जरूरत है। यदि वो आदमी नहीं कहता है, नहीं करता है, तो वो खुद असभ्य है, वो सभ्य नहीं है, वो इस बात को बताता है क्या? देखो अभी आगे पढ़ते हैं, अनुभव अनुभूति जी तो काल बता दिया। अतः शुद्धोपयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही एकमात्र रास्ता है। अब शुद्धोपयोग के लिए निरंतर हम प्रयत्नशील रहें, तो शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए क्या करें, भविष्य समस्या फिर करें। तो ये तत्व चिंतन, तत्व मनन, स्वाध्याय जिसे अपन बोलते, स्वाध्याय में तो सब आ गया ना, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, ये तो सब विकल्पात्मक है। तो तुम प्रयत्न करने की बात जब तक रहेगी तब तक तो विकल्पात्मक ही भूमिका रहेगी, समझे ना। फिर जब जब वो निर्विकल्पक भूमिका में जाओगे तब तो प्रयत्न करने की तो बात रहेगी नहीं, उसमें तो प्रयत्न करने का कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो हमारा उपयोग निरंतर शुद्ध वस्तु में रहे, इसके विचार चिंतन मनन में रहे, समझने समझाने में रहे, ये ही पुरुषार्थ है, बाकी आकुलता है। आकुलता के लेवल पर हमको जाना नहीं है और इससे हमको हटना नहीं है, आप समझ लें ना। ये शांत भाव से जो जो वो चीज है असली, जो अपन को महाभाग्य से प्राप्त हुई है, उससे हमको हटना नहीं है। 80 और 81वीं गाथा में मोहे क्षय का उपाय बताने के उपरांत अब 82वीं गाथा में उपसंहार के रूप में कहते हैं कि आज तक जो भी अरहंत हुए हैं उन सभी ने उक्त उपाय से मोह के नाश का उपाय किया है और दिव्य ध्वनि द्वारा इसी मार्ग को भव्य जीवों को बताया है। उक्त निर्णय के आधार को मति व्यवस्थित करते हुए आचार्य अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। ये 82वीं गाथा की बात करते हैं, इसमें असली मर्म की बात जो है वो ये है कि ये तो वैसे सहज बात है कि अरहंत भगवान ने मोक्ष गए वो सब एक ही मार्ग से गए हैं, तो जितने भी अरहंत हैं वो एक ही मार्ग से गए हैं और वो मार्ग यही है। ये तो हम बहुत हमारे लिए सब सहज बात है, लिखी है आचार्य ने, बढ़िया बात है कि जिनने वो ही रास्ता बताया है उसी मार्ग से गए हैं। अब हमको क्यों कह रहे हो ये, हम तो ये मानने को मान लिया, अब इसमें ज्यादा समझने समझाने की गुंजाइश कहां है, बार बार ये कहने से क्या फायदा। तो आचार्य कहते हैं कि ये मानने से हमारी मति व्यवस्थित होनी चाहिए, इसलिए वो ये नहीं कहते कि तुम अपनी मति व्यवस्थित करो, वो ये कहते मेरी मति व्यवस्थित हो गई है ना, कि ऐसा समझकर अब मुझको और कुछ नहीं ढूंढना है। ये बहुत गड़बड़ है, कि ये तो ठीक है, अपन ने समझ लिया, गुरुदेव ने बताया, प्रवचन सार में भी देख लिया, समय सार में भी देख लिया, सब बात है, लेकिन फिर कहीं कोई नई बात मिलती है तो क्या दिक्कत है अपन को। दरवाजा खुला रखना चाहिए। बहुत से लोग इसको ये कहते हैं कि दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं दरवाजा खुले रखने का अर्थ है कि अनंत विकल्पों को स्थान बनाए रखने देना चाहिए। सबसे पहले तो ये हुआ ना कि हमने जो निर्णय किया है उसको हमने फैसले को रद्द कर दिया, दरवाजा बंद नहीं किया। तो हमारे पिताजी एक सुनाते थे एक वकील का किस्सा कि वो जब एक अदालत में बहस करता था, बहुत प्रसिद्ध वकील था, कोई अलग सी मलकनी ऐसा कुछ नाम बताया करते थे वो, तो एक ऐसे ही केस में जो फौजदारी केस था, फांसी की सजा हो सकती थी जिसमें, और जब वो देख रहा कि अब बिल्कुल खत्म हो गया मामला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उसने उससे कहा कि भाई देखो बचना तो तुम्हारा बहुत मुश्किल है, आपकी फैसला सुनाएंगे तो उसमें फैसले में आ जाएगा या आजीवन कारावास या फांसी पे चढ़ोगे, ये क्या बात करते हो आप। लेकिन एक मेरी बात मानो, ऐसा करो कि एक छोटा वकील और कर लो। आप इतने बड़े वकील चार चार साल से हमारे केस को लड़ रहे और आप नहीं बचा पाए तो छोटा वकील करके हम क्या करें। इतनी बात मेरी मान लो तुम, तो ठीक है आपको जो करना है करो। सुनने एक छोटा सा वकील कर लिया 100-200 रुपया देके और उसको कहा कि तू स्पेसी पे जाके खड़ा हो जा और जो भी तुझे कहना है कह रहा वहां पर। फिर अब उनके मन में क्या था उसको कुछ नहीं बताया उनने। फिर वो वहां गए और वो वकील खड़ा हो गया, उस वकील को सुन लिया जज ने और लिखकर फैसला ही लिख दिया, वही फांसी मांसी की सजा का। फिर ये पहुंचा वकील कि साहब वो मेरा केस का क्या हुआ, कि वो तो हो गया, कि क्या हो गया, फैसला भी लिखा गया। अब सुनाने में सुना रहे हैं ये सब क्या हुआ कि ये फैसला लिखा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा केस था, मेरे को सुने बिना आप निर्णय कैसे दे सकते हैं। आपको मेरे को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप लिख के दीजिए कि हम आपको नहीं सुनते, मैं यहां का लाइसेंस वाला हूं, मैं 40 साल से यहां पर बहस कर रहा हूं इस अदालत में, आज तक किसी जज ने ये नहीं कहा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हावी हो गया वो जज पे, तो जज ने कहा फैसला तो मुझको ही करना है, क्या करना है इसे क्या जो सुना ऐसे जो कुछ सुनाना है। तो अच्छा बोलो साहब आपको क्या कहना है बोलो, तो बोले क्या फैसला हुआ बताइए। जैसे बताया देख के बोले साहब पहले जो आप फैसले पे जो आपने हस्ताक्षर किया है ना इसे आप काटिए, फैसला हो जाए फाइनल और फिर मेरी बहस का क्या मतलब। यानी बहस तो फैसला होने के पहले होनी चाहिए ना, फिर आप द्वारा लिख करके यही लिख देना तो इसी फैसले पे द्वारा साइन कर देना, लेकिन इसे आपको काटना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, उसने लिया ऐसा पेन से काट दिया। तो उसने ले के फैसला और अदालत में कहता है कि साहब आपको अदालत ने माफ किया, आप जाइए, अब आप फांसी चढ़ेगा तो अलग सिंह चढ़ेगा फांसी पे, अब केस चलेगा तो मेरे पर चलेगा, लेकिन इसमें फैसला को काट दिया ना, वो सजा लिखी थी जितनी तो वो हस्ताक्षर काट दिए और वो सजा काट दी क्या। तो ऐसी बात यह है कि जो कहता है कि हमने रास्ता खुला रखा माने हमने अपने फैसले को बदल दिया काट दिया, उसमें वो कमजोरी झलकती है। क्या संत जी क्या कहना चाहता हूं मैं कि हम कि नहीं ठीक है, अच्छा आप कह दो हम आप भी सुन लेते हैं, हमने तो जो डिसीजन कर लिया था हम तो उसी पर रहेंगे, लेकिन आपकी सुन लेते हैं कि नहीं हम नहीं सुनते हैं, हमें नहीं सुनना आपकी। हमारे मनुष्य भव की एक एक समय की बहुत कीमत है, अब हम निर्णय पर पहुंच चुके फाइनल, अब हमको क्या क्यों सुनना? हमारे निर्णय के अनुसार ही तो हमको कुछ कहना चाहते हो, यदि कहना चाहते हो तो जरूरत नहीं है कहने की, हमने मान ही ली वो बात। यदि उसके विरुद्ध कुछ कहना चाहते हो तो हमें सुनना नहीं है, क्या? क्योंकि उस सुनने को तैयार होना कहीं अंदर में कचाहट है इस बात की वो द्योतक है, तो प्रतीति में कच्चापन है। हमारी प्रतीति में किसी कीमत का कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। हमारा निर्णय बिल्कुल आगम के हिसाब से और गुरु मुख से भी हमारा फैसला हुआ होगा तो वो भी हमको वहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि मार्ग है वो, उन मार्ग नहीं है। हमें आचार्यों ने उस सम्मत दर्शन की प्राप्ति के लिए भी वो ही मार्ग बताया है, क्या? तो वो मार्ग है, वो उन मार्ग नहीं है। हमारी श्रद्धा की दृढ़ प्रतीति, हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में रहने दो, वो निर्विकल्प ज्ञान में हो जाएगी और उसके बाद उसी में हम जमा रहेगा उपयोग, जो जो बढ़ते जाएंगे तो चारित्र हो जाएगा, अप्रत्याखानावरण का अभाव हो जाएगा, प्रत्याखानावरण का अभाव हो जाएगा, संजलन का अभाव हो जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जीव गए हैं मोक्ष, वो सब इस ही विधि से गए हैं। ये 82वीं गाथा में बहुत क्लियर कहा है, पढ़ो गाथा।
हंता तेण विधारेण खबिद कम मनसा किच्चात अदोब देशम निबादाते रमो तेसन सर्वे ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो नमन उनको सब विधि
हो नमन उनको सब विधि। इसमें उन्हें हम नमस्कार करते हैं सब, इसमें से वो निकाला है कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, माने ये समापन का वाक्य है, ये अंत नमस्कार है। कहते हैं हमने कोई बात शुरू की थी तो भगवान को याद किया था, अब अंत कर रहे हैं तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, माने हम वो खाता बंद कर रहे हैं, अब इस बारे में हम तुमसे कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उसमें संस्कृत टीका में लिखा है विवस्थिता मतिर मम लिखा है संस्कृत में, और फिर नमोस भगदभ्य कहले क्या ऐसा लगता है क्या लिख रहा है कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है और भगवान को नमस्कार हो। ये भगवान को नमस्कार हो कभी ऐसा भी लगता है कि पधारो साहब नमस्ते नमस्ते कि नमस्ते काय को कर रहे, माने अब आगे चर्चा नहीं हो सकती, हम अंतिम नमस्कार कर लिया, समझिए ना, तुम बात फिर उठाना चाहते हो कि एक बात और मेरी सुन लो, एक बात और मेरी सुन लेगी, नहीं भाई साहब नमस्कार बस तुम्हें, है ना, वो ऐसा कह रहे भगवान अब नमस्कार बस खत्म, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, मैं बिल्कुल पक्के निर्णय पर पहुंच गया हूं, ये विधि में शामिल है आपका इस पक्के निर्णय पर पहुंचना, ये पर्याप्त है। मेरे कह रहे हैं इसके लिए हमें और कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, हम और धर्म नहीं करें, कौन सा और धर्म, कोई और धर्म होता है कोई और धर्म कि भगवान की भक्ति, ये कौन कहता है मत करो, लेकिन ये इस मार्ग में ऐसी कोई कमी रह गई हो और उसका छोंक लगाने से वो कुछ ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है, समझ रहे ना, तुम भक्ति की बात कहते हो, तुम भक्ति नहीं करोगे और खाना खाओगे तो उसको लिए भी हम मना नहीं करेंगे, बाथरूम जाओगे तो उसके लिए भी मना नहीं करेंगे, काय को मना करेंगे, जब हम बाथरूम जाने को मना नहीं करेंगे, हम खाना खाने को मना नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे भगवान की भक्ति करने को मना क्यों करेंगे हैं? लेकिन ये उस विधि में शामिल नहीं है, थोड़ा हेल्प करेगा ना उसे। तुझे पता नहीं है कि तेरा ये मनुष्यभव कितना कीमती है और ये तुम्हारे इस मनुष्यभव को खाएगा क्या? तो वो तेरा फायदा करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो मनुष्यभव का वो मूल्यवान समय बर्बाद हुआ ये बात बिल्कुल पक्की और नक्की है। कल आपका पेपर है, अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, और आपसे अब ये कहें कि ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है, इसे बहुत तुम्हें लाभ होगा, बस ये 10 पेज पढ़ ले इसके, तो आप कहोगे नहीं, 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 नहीं किसी कीमत पर मुझे वो नहीं चाहिए, क्या नुकसान नहीं करेगा तेरी? अरे नुकसान तो तेरे परीक्षा देना इतनी बड़ी बात है और आत्मा का कल्याण करना परीक्षा देने के बराबर भी नहीं है, तो चार्ज अब चार्ज ही पड़ लेगा। परीक्षा का टाइम है, अब 24 घंटे रह गए हैं, तो तब तू किसी के भी कहने से वो इतनी मार नहीं पड़ सकता है। क्यों? कि आ जाओ विधान में आओ, 3 घंटा बैठ रहेगा, कैसा ज्यादा ये नहीं होगा, हमारी भी नहीं मानोगे, माफ कर दूंगा, परीक्षा है माने वो हमारे इतना काम है, भगवान की भी नहीं मानेंगे तुम्हारी तो क्या, हम तो नहीं मानेंगे। बोलो क्या? बुरा मानना हो तो बुरा मानो, अच्छा मानना हो तो अच्छा मानो। तो जैसे तुम परीक्षा में जाओगे और किसी की नहीं मानोगे, क्या हमारे यहां शादी है, विवाह है, 2 घंटे को आ जाना, तो अपन नहीं मानते हैं ना, नहीं मानना चाहिए ना है? तो ऐसे ही पर हम मुक्ति के मार्ग का सीधा मामला है और तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे, कोई भी उसमें सामने वाले को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने मनुष्य भव के एक एक समय की कीमत करें, इसमें सामने वाले को बुरा लगे तो उनके लिए व्यासी में गाथा करते हैं नमस्तुभ्यम, मूल गाथा में लिखा है ये किच्चा तथोपदेशम निबादा तेणमो तेम, बस उनको नमस्कार। ऐसा बहुत कम में मिलेगा कथा है, माने कितनी बड़ी बात वो कहते हैं, मैंने 80 और 81 गाथा में उनने कितनी बड़ी बात कह दी है सुपरिणामाधिकार में, कि जिसके बाद वो कहते हैं अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं और आगे बात करने को तैयार नहीं है, इसलिए अपने 81 और 82वीं गाथा हो गई, यदि कोई विकल्प मेरा बनेगा 24 घंटे में तो मैं इनकी चर्चा फिर उठाऊंगा, नहीं तो अपन आगे की गाथाओं पर चलेंगे।